गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारे हे यमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारे यमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा वनमाली राधा वनमाली राधा वनमाली राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय ताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bol Nitai Gaur Premanande. ओम ज्ञानतिमिरान दर्श ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम ज्ञानते हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते हरे कृष्ण तो आज के इस धारावाहिक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज है चैतन्य चरितामृत आदिलीला भाग दो, आदिलीला अध्याय दो, श्लोक संख्या 20 और 21। हरे कृष्ण। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मे कांसेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मे कांसेन स्थितो जगत्। आज श्लोक संख्या 20 और 21 है, उसका भी पाठ करेंगे। तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि तिष्ठति मात्मकल्पितानां प्रतिद्रसमेव नैकाधार्थमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठत मात्मकल्पितानां प्रतिद्रसमेव नैकधार्कमेवं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिद्रसमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। आप दोनों का पाठ कर सकते हैं।
Thank you.
पंखा नहीं चल रहा, पंखा हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और ये दास आपसे कृपा याचना करता है, आशीर्वाद करें ताकि अमल पुराण के विषय में कुछ कहा जा सके। आज चैतन्य चरितामृत है, आदि लीला का अध्याय 2, श्लोक संख्या 20 और 21 है। जय जय श्री चैतन्य जय अद्वैत जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में जो श्लोक है ना, इसमें 20वें नंबर का जो श्लोक है ना, वो भगवत गीता के 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है और 21वां श्लोक जो है ना वो श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय का 42वां श्लोक है। एक श्लोक भगवत गीता का और एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का। भगवत गीता का ये श्लोक इसमें संग्रहित हुआ है, वह 10वें अध्याय का, जिस अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है, और उस अध्याय का यह अंतिम श्लोक है। जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अथवा, पढ़िए सभी, अथवा बहुना और अधिक एतेन इससे किम क्या लाभ, ज्ञातेन जानने से तब तुम्हारे द्वारा अर्जुन हे अर्जुन विष्टभ्य व्याप्त होने से अहम मैं इदम यह कृत्स्नम संपूर्ण एक अंशेन एक अंश से स्थितः स्थित जगत ब्रह्मांड। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, एक लाइन का श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी शक्तियों का वर्णन करते हुए भगवत गीता 10:42 का यह श्लोक कहा है। इसके बाद में 21वां श्लोक, तम उन्हें इमाम यह अहम मैं अजम अजन्मा शरीर भाजाम देहधारी वद्धात्माओं का हृदय हृदय प्रत्येक हृदय में धिष्ठितम स्थित आत्म अपने आप कल्पितानाम जो कल्पित है प्रतिदृशम प्रत्येक दृष्टि के लिए एव की भांति न एक अधा एक प्रकार से नहीं अर्कम सूर्य एकम एक समधिगतः जिसने प्राप्त कर लिया है। अस्मि मैं हूँ, विधूत दूर हुआ, भेद मोह जिसकी द्वैत की मिथ्या धारणा। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। पितामह भीष्म ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप में अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह से हे अजन्मा, आप हर जीव में परमात्मा के रूप से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं, किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह जाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हुआ हूं और भली भांति जानता हूं कि परमात्मा आपके अंश मात्र हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम 1.9.42 का यह श्लोक कुरुगों के पितामह भीष्म देव ने तब कहा था जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में सरसैया पर लेटे थे, जब महाराज युधिष्ठिर मरणासन्न भीम से नैतिक तथा धार्मिक उपदेश ग्रहण कर रहे थे। तब उस स्थान पर अर्जुन, कृष्ण तथा उनके असंख्य मित्र, प्रशंसक, परिजन तथा ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। जो ही भीष्म का अंतिम समय आ गया त्यों ही उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए यह श्लोक कहा था, जिस प्रकार एक सूर्य अनेक व्यक्तियों के लिए देखने की वस्तु है, उसी तरह भगवान कृष्ण के एक अंश जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सनातन सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आता है, वह परमात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्थानीय अंश के रूप में देखता है। भीष्म देव जानते थे कि परमात्मा उन भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप हैं, जिन्हें वे परम अजन्मे दिव्य रूप में समझते थे। श्रील प्रभुपाद की। इस अध्याय का शीर्षक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये अध्याय बहुत ही दिव्य है और समस्त शास्त्रों से, भागवत से, भगवत गीता से, अन्य अन्य ग्रंथों से, चैतन्य चरितामृत में का वो आनंद समुद्र है वो संग्रहित किया गया है। और चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है ना, बड़ी श्रद्धा के साथ अगर धारावाहिक तरीके से समझता हुआ कोई व्यक्ति इसका स्वाध्याय, अध्ययन, निदिध्यासन, मनन करता है तो सिद्धांत क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं जो इस अध्याय में बताया गया है कि सिद्धांतों के मगर रूपी बड़े बड़े तर्क और दृष्टांत हैं, उनको पार करना बड़ा मुश्किल है। चेतन चरितामृत का अध्ययन और समर्पण रूप से अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए घोर मकरा समुद्र को पार कर जाता है। आप जब अध्यात्म के क्षेत्र में चलते हैं तो अन्य अन्य अध्यात्मवादियों के साथ में आपका मुकाबला होता है। अपने अपने तर्कों के अनुसार वह यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वह मार्ग सही और परिपक्व है, आप जिस पर चल रहे हैं वह उतना सटीक और उचित नहीं है। इस प्रकार जब सामने अपने अपने मत को प्रस्तुत करके और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उस समय एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि वास्तव में वह निश्चित मार्ग कौन सा है जिस पर चल करके आत्म कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। आपसे भी श्रेष्ठ वक्ता, आपसे भी श्रेष्ठ तर्क के द्वारा प्रस्तुत करने वाला आपको भ्रमित कर सकता है? उस अवस्था में आप क्या करेंगे? यदि आपने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, जाना है, समझा है, श्रील प्रभुपाद जी की टीकाओं को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है, तो कितनी भी सामने घोर मकर आ जाएं, न तो आप भयभीत होंगे, न आप उससे प्रभावित होंगे, आप निकल करके जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने जो कुछ प्रस्तुत किया है, वह मैं एक कहना चाहता हूं कि आप गुरु साधु शास्त्र के चरणों में विनीत होकर के, निष्कपट भाव होकर के अपने आप को समर्पित कर दो। यदि आप अपना अस्तित्व बचा करके रखना चाहते हैं, मैं रहूं भी, मैं समझूं भी और मैं जानूं भी, और मेरा अस्तित्व सुरक्षित रहे, तो निश्चय ही पूर्ण वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। वस्तु की प्राप्ति तभी होगी जब आप पूर्ण समर्पण कर देंगे, और पूर्ण समर्पण तब आप करेंगे जब आपका अंतःकरण, दिल, आत्मा जब मान जाएंगे कि इनके सामने हम समर्पण करें। तो समर्पण करने की कोई स्थान, वस्तु, व्यक्तित्व है तो श्रील प्रभुपाद जी और उनके अनुगत्य भक्त हैं। उनके चरणों में समर्पण करने से आप हाईवे पर चलने वाले बन जाएंगे, पगडंडियों की जो व्यथा है वह आपसे दूर हो जाएगी। एक एक श्लोक को श्री चैतन्य चरितामृत में जो लिया गया है, इतना सुंदर और सटीक लिया गया है। यहां पर इस श्लोक की जो उपस्थिति हुई है, वह यह कहना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। आनंद और लीला विलास से नदियां में प्रकट हुए हैं। आप कोई संशय और संकोच मत करो, वही कृष्ण प्रस्तुत हुए हैं। असंशय और संकोच यदि आप में रह जाएगा ना, तो फिर वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, अब ये अंतःकरण आपका तब पूरी तरह से संतुष्ट होगा जब आप भगवान श्री कृष्ण को भी शास्त्रों के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार आप समझ पाएंगे और चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य आप जानते हैं, भगवान स्वयं का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए हैं। स्वयं का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए हैं। स्वयं का अर्थ समझने की कोशिश करो, भगवान श्री कृष्ण तो रसो वैसा, वे कौन है? रस। वह रस तो है, लेकिन उस रस का हम क्या करें? उस रस का कोई आस्वादक तो है ही नहीं जो ये कहे कि भाई रस तो बहुत सुंदर है। रस अपने आप में कैसे कहेगा कि मैं बहुत सुंदर हूं? तो उस रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं कि मेरे अंदर क्या रस है। किशोरी जी, श्री जी, राधा जी के रूप में प्रकट होते हैं। तब रस का विषय और रस का आश्रय प्रकट होता है, आनंद तब प्रकट होता है। कृष्ण पूर्ण रूप से अपने आप पर आसक्त हो जाते हैं, श्री जी पर आसक्त हैं, और श्री जी पूर्ण रूप से कृष्ण पर आसक्त हैं। अब वो रस और आगे बढ़कर के किशोरी जो मेरा आस्वादन करके जो सुख उठाती हैं, वह सुख कैसा है और कौन सा है? वह लोभ प्रकट कृष्ण में होता है। तब कृष्ण श्री जी की अंग कांति और भाव द्युति को लेकर के प्रकट होते हैं, और फिर भक्त उसका आस्वादन कैसे करें, भक्त उसका आस्वादन करके अपनी संसिद्धि को कैसे प्राप्त करें, उन भगवान को प्राप्त करके गौलोक कैसे जाएं, यह शिक्षा देने के लिए भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वदन्ति तत्तत्त्व विदस्त तत्त्वम यद् ज्ञानमय अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्व, उस तत्व को, तत्त्व विदस्त तत्व को, तत्व को जानने वाले अद्वयम् तत्व, जो द्वय नहीं है, दो नहीं है, एक ही वस्तु है। पात्रता के अनुसार वह ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म स्वरूप भगवान की अंग कांति है, चकाचौंध है। ज्ञानी जन अंधकार से निकल करके उस ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं। दिवि सूर्य सहस्र से भगवेद उगवत उत्थिता यदि वा सादृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मना। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, उस समय संजय कहते हैं दिवि सूर्य सहस्र से, हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं और उनकी जो आभा, उनके जो प्रकाश है, उन महात्मन का मुकाबला कर जाए, यह संभावना नहीं है। अर्जुन तो चकाचौंध में देख रहा है, अभी क्या हुआ, कृष्ण मेरे सामने सखा रूप में खड़े हुए थे, अब तो अवलोकित भी नहीं हो रहे हैं। तो अंधकार में रहने वाले व्यक्ति के लिए प्रकाश बहुत बड़ी वस्तु है। आत्मा प्रकाशवान वस्तु है, वह उसकी तरफ जाना ही चाहती है। असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, यह हमारा मार्ग है, गमन है, हम जाना चाहते हैं। लेकिन यही मंजिल मान लें कि वस ब्रह्मेति ही पूर्णता प्राप्त हो गई, तो यह नहीं है। वह जो प्रकाश है, जिनका है, उन्हें जानना होगा। उनका जो अंदर व्यक्तित्व है, उन्हें जानना होगा। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द के रूप में यह प्रकट होता है। एक व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, वो हमारे यहां रहते हैं, मैं उनका नाम ये है, उनका घर ये है, इतना जानते हैं। इतना जानने से उनका परिचय पूर्ण नहीं हुआ। एक व्यक्ति जो उनके साथ रहता है, वह बताता है उनका स्वभाव वैसा है, और एक उनके दिल में जो चल रहा है, जो सोच रहे हैं, उनका जो अंदर का व्यक्तित्व, वो अलग वस्तु है। तो भगवान परमात्मा और ब्रह्म के रूप में वह भगवान ही अपना प्रकाश करते हैं, और उस प्रकाश का आस्वादन भी तीन शक्तियों के द्वारा होता है, जड़ शक्ति, तटस्था शक्ति और पराशक्ति के द्वारा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनोषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम यति यम विभिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेया मितस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतम महाबाहो यदि यम धारित्य जगत। हे अर्जुन, मेरी अपरा शक्ति है, प्रकृति जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, मन बुद्धि अहंकार, इससे श्रेष्ठ मेरी दूसरी प्रकृति है जिसको जीव प्रकृति कहते हैं। वह जीव प्रकृति इस अपरा प्रकृति को धारण करती है। यह तब संजीवित होगी जब जीव इसको धारण करेगा, अन्यथा यह विखंडित रूप में होगी। और जीव इसको धारण करके भी आस्वादन करना तो चाहेगा, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक जीव इसको भोग भी नहीं सकता। तो वह चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, सब अवस्थाओं में है। इसीलिए यहां पर कहा गया अथवा बहु नेते ने किम ज्ञाते न तव अर्जुन। हे अर्जुन, अथवा बहु किम ज्ञाते ने, बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। विष्टव्या अहम इदम कृष्ण एकांशे निस्थितो जगत। मैं संपूर्ण प्रकृति में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अपने एकांश से स्थित हूं। अर्जुन ये कहता है कि प्रभु यदि आप कृपा करें तो मुझे सुनाइए। हंतते कथस्यामि दिव्य ह्यात्म विभूतया, मैं आपको सुनाऊंगा। प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्तिन तो मस्त बिस्तर से में मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित, मैं सभी जीवात्माओं की आत्मा है। अहम आदिर मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, मैं जीवों का सृष्टि का आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। उत्पन्न करने वाला हूं, पालन करने वाला हूं, संहार करने वाला हूं। अहम सर्वस्य प्रभुवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुधा व्यक्ति है भाव समन्वित होकर के जान गया अब मुझे कोई अन्वेषण और जानने की इच्छा नहीं है, अब तो सिर्फ एक ही कार्य रह गया है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये वस्तु है, तुष्यत संतुष्ट को प्राप्त होते, संतोष को प्राप्त होते हैं और रमन करते हैं, संतोष को प्राप्त होते हैं और रमन करते साम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा ही साध्य है। आप सोचते हो आप अपने बल पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। समर्पण आपका कार्य हो सकता है लेकिन प्राप्ति आपके द्वारा नहीं है, प्राप्ति तो भगवान के द्वारा ही है। यशोदा मैया दौड़ सकती हैं लाला को बांधने के लिए, पसीने से लथपथ हो सकती हैं और कह भी सकती हैं कि लाला तू बहुत शरारती हो गया है, आज मैं तुझे बांधूंगी। और मैया बांधने में समर्थ, तब मैया विचार करती है मेरा हृदय कर रहा है, मेरा लाला है, मैं भी अपने लाला को मैं चपत लगा सकती हूं। मां अपने बच्चे को मारती है तो पहले तो कहती है बहुत मारूंगी, हाथ भी बहुत ऊंचा उठाती है लेकिन जब कपोल पर लाती है तब वह धीरे से लगाती है। मैया कहती है लाला मैं बहुत प्रयास कर चुकी, थक गई मैं पसीने से, लाला बंध जा। मैया ने कर दिया समर्पण तो लाला ने कर दी कृपा, बांध ले। अगर तू दौड़ दौड़ करके पकड़ करके बांधना चाहती थी ना तो तू बांध नहीं सकती थी मेरे को, खड़ी हो गई लाला बंध जा तो कृपा कर दी। ऐसे ही भगवान, कोई भगवान को जानना चाहता है ज्ञान के आधार पर जानना चाहता है, बुद्धि के आधार पर जानना चाहता है, जानने वालों इतना तो समझ लो जिस वस्तु को लेकर के तुम बैठे हो, जिससे तुम जानना चाहते हो, जो इंस्ट्रूमेंट का तुम प्रयोग कर रहे हो तो वो तो कृष्ण का ही है, वो कृष्ण ही है, उन्हीं को समझना चाहते हो और अपनी स्वतंत्र सत्ता लेकर के कितना मूर्ख कार्य कर रहे हो। बुद्धि कृष्ण की, मन कृष्ण का, अहम तत्व कृष्ण का और कृष्ण ही खेल रहे हैं। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, तेरा क्या है मेरा है। कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, देखो ये मेरी आंशिक स्वतंत्रता की सत्ता का उपयोग हुआ। कृष्ण बड़े खुश होते हैं। कृष्ण कोई कहता है कि मैं कृष्ण को नहीं मानता हूं, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, देख लो मैंने उसको स्वतंत्रता दी है ना। सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना तो जीव का है ना कार्य, सदुपयोग करेगा आनंद और मेरी तरफ आएगा, दुरुपयोग करेगा तो दुख उठाएगा। और उसके बाद में भगवान ये भी कह देते ना दत्ते कश्चित पापम नैवम सुकृतिम विभो अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जनतवा ज्ञाने न तु यद ज्ञानम ये साम नासित मात्मना, जिन्होंने अपने अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर लिया है तेसाम आदित्यवत उनका ज्ञान सूर्य के समान प्रकट होता है। तो भगवान को बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना, और यहां पर दूसरा सुंदर भाव और श्लोक दे दिया। और यहां पर पितामह भीष्म कृष्ण से कहते हैं, और पितामह भीष्म की स्तुति का ये अंतिम श्लोक है, बड़ा मार्मिक श्लोक है। तमिमहम मजम शरीर भाजम हृदय दितिष्ठत मात्म कल्पिता नाम प्रतिदर्शमिव नैक धार कमेकम समधिगतो अस्मि विधूत भेद मोह। समधिगतो, जो शरणागति को ले ली है जिसने, शरीरधारी ने, वह हरेक हृदय में देखता है, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा विराजमान, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है। प्रतिदिशमिव नैक धार कम एकम, वो देखता तो प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा को है, लेकिन ये बात तो क्यों भूल रहे हो कि परमात्मा खंड खंड नहीं है, परमात्मा खंड खंड नहीं है, परमात्मा अंतर्यामी है, अर्थात वही परमात्मा सभी में एक साथ विराजमान है। जिन्होंने अपनी सत्ता का सदुपयोग कर लिया है, आत्मा को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा के साथ सानिध्य प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को वह जान जाएगा। परमात्मा का सानिध्य करने के साथ ही परमात्मा विराजमान हर जगत में है, वह जीवात्मा भी बहुत ऊंची स्थिति को, समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में समर्थ हो जाएगा। लेकिन वही जीवात्मा जब पदार्थ की तरफ घूम जाएगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ जुड़ जाएगा, तो ध्यान दीजिए कितना भी प्रयत्न करने के बाद में आत्म कल्याण सुख और शांति को कभी भी प्राप्त नहीं होगा, द्वंद्व और द्वैत उसके अंदर उत्पन्न होता रहेगा। इस श्लोक को यहां आकर के प्रस्तुत होकर के हृदय में बड़ी स्फुरणा उत्पन्न हुई, क्या क्या सुंदर भाव से श्लोक यहां रखा गया होगा, ये भाव क्या है। युद्ध समाप्त हो चुका, पांडवों की विजय हुई, पितामह भीष्म रणक्षेत्र में पड़े हुए हैं सरसैया पर, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को प्रतिष्ठित करके यज्ञ करा करके उनको सम्राट बना दिया है, एक छत्र राजा बना दिया है और सभी अवस्थाओं को ठीक कर दिया है। बहुत सारी इसमें लीलाएं आई। प्रथम अवस्था में जब उनके पुत्रों को मारा गया तो अर्जुन प्रार्थना करते हैं, अर्जुन की प्रार्थना के बाद में फिर उत्तरा प्रार्थना करती है, उत्तरा के बाद में कुंती प्रार्थना करती है, कुंती प्रार्थना को संतुष्ट करने के बाद में आज हृदय खिन्न हो गया धर्मात्मा का, युधिष्ठिर का हृदय खिन्न हो गया, हाय हाय मैंने क्या किया, युधिष्ठिर युधिष्ठिर आज तेरे कारण कितने वीर हताहत हुए हैं, कितनी अक्षोहिणी सेनाएं मारी गई हैं, यह शरीर कुत्ते और हिंसक पशुओं का आहार है, उसके लिए मैंने न जाने कितनी अक्षोहिणी सेनाओं का विनाश कर दिया। युधिष्ठिर यदि तू जन्म नहीं लेता तो यह युद्ध नहीं होता, इसका भागी तू नहीं बनता, हाय मैंने बहुत बुरा किया। मोह को प्राप्त हुए थे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, आज धर्मात्मा को मोह प्राप्त हो गया है, इस समय भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इन धर्मात्मा को उपदेश, आज मैं परमात्मा के रूप में नहीं दूंगा, आज इनको उपदेश किसी महात्मा से दिलाएंगे। और बोले भैया भैया ऐसा करते हैं, आपकी बात है, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे, कितने कितने महान ऋषि व्यास पराशर धौम्य आज ऋषि समझा रहे हैं कि काल के प्रभाव से सारे कार्य होते हैं, युधिष्ठिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जिन कार्यों के द्वारा मैंने ये कार्य किया है, अरे गंदे जल के पात्र को गंदे जल से धो करके उसको पवित्र नहीं किया जा सकता, हिंसा का कार्य हिंसा से निपटाया नहीं जा सकता है, मैंने ये कार्य किया, संतोष को प्राप्त नहीं हो रहे। आज उन्होंने कहा कि चलो हम आज पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भीष्म के पास में युधिष्ठिर आदि अपने अपने रथों पर सवार होकर के जब गए तो शोभा कुछ देखने लायक थी। यक्षों से घिरे हुए कुबेर की उपमा दी गई, वहां जाकर के जैसे पहुंचे पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं, और सरसैया पर लेटने के बाद में अपने अपने रथों से उतर करके आवाज नहीं करनी। पांडव गए प्रणाम किया, दाहिनी तरफ खड़े हो गए, राज वधुएं गईं प्रणाम किया, बाईं तरफ खड़ी हो गईं, और केशव गए प्रणाम किया और पैरों की तरफ खड़े हो गए। धीरे से केशव ने कहा, पितामह पितामह, पितामह ने दृष्टि को खोली, आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद में बोले, अरे केशव आ गए, केशव तुम आ गए, केशव मुझे पता था आप अवश्य आओगे, अवश्य आओगे, केशव आप आ गए। पितामह, पांडव आए हैं, हाँ पांडव, पितामह, द्रौपदी आदि राजबधुएं आई हैं, राजबधुएं, हाँ, अरे हम क्या बताएं, जो पांडव सदाचारी हैं, जिन पांडवों ने भगवान की शरणागति ग्रहण की, उन पांडवों को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिला। पांडव हमेशा जूझते रहे, इनका कोई दोष नहीं था, इन्हें यह दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए था, वही कष्ट और दुख पांडवों को प्राप्त हुआ। इसका कारण मैं किसको बताऊं? ये जो केशव है ना, एक केशव जो चाहते हैं वैसा ही होता है, इनकी इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। पितामह, ये पांडव युधिष्ठिर राज्य संभालने वाले हैं, आप इन्हें उपदेश करिए, आप इन्हें उपदेश करिए। अरे केशव, हम क्या उपदेश करें, आप जहां विराजमान हो वहां पर मेरा उपदेश करने का औचित्य क्या रह जाता है? नहीं पितामह, आज इनको उपदेश करिए। और पितामह ने वर्गीकृत होकर के दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म, राजधर्म, योग धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म आदि का विश्लेषण किया, और विश्लेषण करते हुए बोले कि जहां पर अन्याय हो रहा हो वहां अन्याय का मुकाबला करना चाहिए, अगर मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। उपदेश कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी को हंसी आ गई। हंसी आने के बाद में पितामह भीष्म की चिंतन और चेतना घूमी, हां द्रौपदी हंस रही है, द्रौपदी तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? बोला पितामह कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ, वैसे ही हंसी आ गई। पितामह बोले राजबधुओं को वैसे हंसी आया नहीं करती है, कुछ कारण होगा। उस समय द्रौपदी बोली पितामह मुझे हंसी इसलिए आ गई, राज दरबार में दुशासन के द्वारा जो मेरी अस्मिता का हनन हो रहा था, पितामह भीष्म आप उस सभा में बैठे हुए थे, आपने उस सभा का न तो प्रतिकार किया और न आप स्थानांतरित हुए। पितामह भीष्म बोले बेटी सत्य कहा है तुमने, मैंने उस राज्य के प्रति जो समर्पण और कसम खाई थी कि मैं इस राज्य के प्रति सदा उत्तरदायी रहूंगा, और उसी के कारण मैं उस राज्य के प्रति समर्पित रहा, लेकिन उस उत्तराधिकार उस राज्य को चलाने वाले जो आए वो कुशल नहीं थे, उनकी नीतियों से हम भी आहत हुए। बेटी यही मान लो कि मैं उस राज्य में उनमें रह करके नमक भी खाया, कुछ भी खाया, मैं उसमें विरोध नहीं कर सका। बेटी आज विचार करो, इन सिकित सिरों से वेदित शरीर, इसमें एक रक्त की बूंद नहीं रह गई, ये नीचे सर से आगे नीचे देखो रक्त ही रक्त है, अब इस शरीर में रक्त नहीं है, इसके अंदर सिर्फ अस्थि रह गई है, और वह अस्थि भी इसलिए रह गई है कि यह केशव का परित्याग करके शरीर का परित्याग करेगी, आज मेरी बुद्धि शुद्ध है, बेटी अन्याय हुआ। इतना कहने के बाद केशव की तरफ मुड़े, और केशव की तरफ मुड़ करके इतमत रूप कल्पिता वित्रष्ण भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनी, सुंदर स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में बोले ये केशव, इन केशव की कौन कहे, जिस समय मैंने बाणों से पूरा रणछिद्र ढक दिया था, अर्जुन को बिल्कुल ही मैं घायल और मारने वाला था, उस समय भगवान श्री कृष्ण केशव बोले, अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, पितामह भीष्म ने वाणों की वर्षा से आकाश को ढक दिया है, तुरंत पितामह भीष्म को मारो मारो मारो। और ऐसा करने पर अर्जुन जिस समय समर्थ नहीं हुआ, उस समय केशव रथ से कूद पड़े और रणांगण में पड़ा हुआ एक टूटा हुआ रथ और उसके पहिए को उखाड़ करके पितामह भीष्म की तरफ दौड़े। पितामह भीष्म की तरफ दौड़ते समय उस समय उनका पीतांबर था, लहरा रहा था, उतर करके अर्जुन आया और भाग करके केशव को पकड़ लिया। केशव ये तुम क्या कर रहे हो, केशव ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि रणभूमि में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और आपने उठा लिया। हे केशव, आपकी वह झांकी पीतांबर लहराता हुआ और आपके मुखारविंद पर रण क्षेत्र की जो रज थी और रज के बीच में जो बूंदे थी पसीने की, इतनी सुंदर और शोभायमान हो रही थी। हे केशव, मेरा मन तो उसी समय आप में आकर्षित हो गया, मैंने कसम खाई थी। आज जो हर ही नस्त्र गहां, मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि केशव ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं मैं केशव को अस्त्र पकड़ा दूंगा हाथ में। आज जो हर ही नास्त्र उठाऊं तो लाजो गंगा मैया को, तो लाजो गंगा मैया को सांतनु सुतन कहाऊं, स्यंदन खंडी महारथ खंडो अंबर धूल उड़ाऊं, स्यंदन खंडी महारथ खंडो अंबर धूल उड़ाऊं, इति न करो सपत मोय हरि के सांतन सुतन कहाऊं। आज जो हरि ही नास्त्र उठाऊं, और आपने केशव मुझ पर करुणा करने के लिए अस्त्र को उठा लिया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि पर सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ करके प्रभु ने अपना नियम टाल दिया और केशव वह आपका छवि मेरी आंखों में बस गई है, केशव अब मेरी मति वित्रष्णा हो गई है, केशव अब मुझे कोई तृष्णा नहीं रह गई है, वित्रष्ण मति से केशव अब मेरा मन आप में लग गया है, केशव अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, और आप मेरे ध्यान के पथ चतुर्भुज ध्यान के पथ में आ जाइए और केशव मेरे ध्यान में आप आ जाइए। सुंदर वर्णन किया है और सुंदर वर्णन करने के बाद में यही श्लोक अंत में बोले कि ये केशव ऐसे ही दिखाई देते हैं, जिस प्रकार आप अग्नि को लकड़ियां बहुत सारी डाल दीजिए अग्नि लगा दीजिए, जिस प्रकार टेढ़ी अग्नि में अग्नि जल रही है तो अग्नि टेढ़ी दिखाई देगी, एल प्रकार की लकड़ी पड़ी हुई है तो उसमें अग्नि एल दिखाई देगी, लेकिन अग्नि कोई रूप धारण नहीं करती है, वह परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा में जाकर के अलग अलग जैसा दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा अलग अलग नहीं है। फिर अलग अलग दिखाई क्यों देता है, अलग अलग दिखाई इसीलिए देता है प्रत्येक जीवात्मा प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के गुणों से भिन्न भिन्न चेतना को धारण करता है। भिन्न भिन्न चेतना को धारण करने के कारण भिन्नता जो आती है प्रकृति के गुणों में आती है। पंच महाभूतों में कोई दोष नहीं, परमात्मा में कोई दोष नहीं, आत्मा में कोई दोष नहीं। जब दोष का सृजन होता है तो प्रकृति के गुण करते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा भिन्नता दिखाई दे रही है। मैं मेरा तू और तेरा का जो भाव प्रकट हुआ है वह प्रकृति के गुणों में है। जो जीवात्मा इसी जीवन में इस प्रकृति के गुणों की श्रृंखला को तोड़ देते हैं और समग्रता में व्यस्ति में से निकल करके समष्टि में आ जाते हैं और समष्टि में आकर के जित देखो तित श्याम मई है। भगवद गीता के छठवें अध्याय में तीन श्लोक बड़े सुंदर हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। पहला आत्मा परमात्मा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मै पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। भगवान सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। उत्तम भक्त के रूप में भी आपने श्रवण किया और जाना है कि उत्तम भक्त कोई विभिन्नता का दर्शन नहीं करता, ऊंचा नीचा किसी का दर्शन नहीं करता। उत्तम भक्त सभी में श्याम सुंदर देखता है। उत्तम भक्त क्या देखता है? सभी में श्याम सुंदर देखता है। भक्त वही होता है सब में श्याम सुंदर का दर्शन करे। और श्याम सुंदर का दर्शन जिसकी नजर में आ गया, जिसकी दृष्टि में आ गया, तर गया भव सिंधु वो चारों पदार्थ पा गया। नाम लेने का मजा जिसकी जवां पर आ गया, नाम लेने का मजा जिसकी जवां पर आ गया, तर गया भव सिंधु वो चारों पदार्थ पा गया। तो इसी प्रकार सुंदर भावों के साथ में ये जो श्रद्धांजलि अर्पण की पितामह भीष्म, पितामह भीष्म ने उत्तरायण आने पर भगवान श्री कृष्ण के केशव के सामने खड़े होने पर और प्रणाम करते हुए अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। विसर्जन करने के साथ में ही जैसे संध्या काल के समय पर पक्षियों का कलरव कोलाहल शांत हो जाता है, उसी समय पितामह भीष्म के सामने सब शांति आ गई और उस शांति को भंग करते हुए केशव बोले, भैया युधिष्ठर पितामह भीष्म पधार चुके हैं, अब इनके शरीर की क्रिया करो। और सुंदर तरीके के साथ में शरीर की क्रिया कर करके हस्तिनापुर को गए। हस्तिनापुर को जाकर के कृष्ण तो अब जाएंगे द्वारिका, लेकिन कृष्ण को द्वारिका जाने से पहले रोक लें हम सब मिल करके, और ये रुकने वाले तो नहीं है, हम कैसे रोकेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर प्रेमानंदे।